ध्यायेह नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौड़पदं महंतं गोविंदयोगींद्रमतस्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शान्तिः 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 चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव सब पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर रक्ष मां चंद्रशेखर रक्ष मां ओ प्रेमपुरी आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दहिया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत विशेष संत प्रवचन माला कार्यक्रम का आज से आरंभ कर रहे हैं। ये कार्यक्रम विगत 3 वर्षों से लगातार चल रहा है। कवि प्रेमपुरी आश्रम आयोजित संत प्रवचन माला के अंतर्गत कवि प्रेमपुरी आश्रम आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत इस वर्ष गीता चिंतन माला के अंतर्गत इस कार्यक्रम को ले रहे हैं। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी की रचना भगवान शिव के प्रति अपनी भावनात्मक भक्ति से ओतप्रोत यह शिवानंद लहरी, जैसे कि इसका नाम है शिवानंद लहर। आजकल चौमासा में समुद्र में लहर चल रहे हैं, तरंग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। विशेष करके आजकल के जो आधुनिक युवा युवती उस लहर का बड़ा आनंद ले रहे हैं। हम जैसे बूढ़े तो घबरा जाते हैं, पानी के छींटे से भी हमको खांसी जुकाम अनेक रोग आदि व्याधि आ जाते हैं, इसलिए हम बचना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं युवा युवती को आनंद लेते हैं उसका। हम वृद्धों के लिए प्रेमपुरी आश्रम में ये शिवानंद लहर है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सौ सौ श्लोकों का ये लहर, ये तरंग, इसका हम मुमुक्षु भगवान के भक्त भरपूर आनंद ले सकते हैं। और इसी उद्देश्य से इसका आरंभ किया गया है। भक्ति में भाव प्रदान होता है, भक्ति में तर्क और बुद्धि का बहुत कम योग उपयोग होता है, भक्ति में भावना से संबंध है, भाव प्रदान है। इसलिए किसी संत ने कहा प्रार्थना भले ही शब्द शून्य हो लेकिन भाव शून्य नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना में शब्दों का महत्व बहुत कम है, लेकिन कई बार हम शब्दों का प्रयोग करते हुए भाव से रहित हो जाते हैं, केवल शब्दों के चक्कर में पड़ते रहते हैं। शब्दों के साथ भावना यदि जुड़ी हुई हो तो प्रार्थना सही होता है। तो मुझे लगता है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस शिवानंद लहरी में शब्दों का प्रयोग तो किया ही है, लेकिन इन शब्दों के साथ उन्होंने अपना अपनी भावना किस तरह प्रस्तुत किया है, ये बात शिवानंद लहरी के प्रसंग से हमें जानने को मिलता है। जैसे कि शिवानंद लहरी में 100 श्लोक हैं, कुछ कुछ श्लोक शिवानंद लहरी के इतने महत्वपूर्ण हैं, वह हमारे हृदय को छू जाते हैं। विगत 3 साल तक हमने इसकी व्याख्या लगातार करते आ रहे हैं और हमारा लक्ष्य रहेगा कि इस साल इसको पूरा करेंगे। गत वर्ष हम अंतिम प्रवचन के लिए हमने 66वां श्लोक का प्रयोग किया था। नियमानुसार इस साल हम 67वां श्लोक से आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले 66वें श्लोक का वो निरंतरता बनी रहे, आपको स्मरण में आ जाए, तो 66 श्लोक का भाव क्या है और उस भाव से 67वें श्लोक का संबंध क्या है, इसके लिए हम पहले अभ्यास कराएंगे आपको। शंकराचार्य जी ने अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है इस स्तोत्र की रचना में। ये 67वां श्लोक आर्य छंद का प्रयोग किया। बहुविध परितोष बाष्प पुरस्फुर पुलकांकित चारु भोग भूमि चिरपदकांक्षी सेव्यमानां परम सदाशिव भावनां प्रपद्ये। इसको अलग अलग पद का प्रयोग करके इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। दूसरा श्लोक है 68वां, अमितम मुदमृतम मुहुर्दुहंतिम विमल भवत्पद गोष्ठमावसंतिम सदय पशुपते सुपुण्य पाकाम मम परिपालय भक्ति धेनु मेकाम जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्ध्या वरिवसितुं सुलभ प्रसन्न मूर्तिः अगणित फलदायकः प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राससे करोस्ति। इन श्लोकों में शंकराचार्य जी ने श्लोकों के द्वारा शंकराचार्य जी ने जो भाव व्यक्त किया है उसकी व्याख्या करते हैं। पिछले साल का अंतिम श्लोक 66वां श्लोक, हालांकि गत वर्ष हमने इस पर बहुत व्याख्या की, 1.5 घंटे तक इस श्लोक की व्याख्या की थी। क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचमखिलम क्रीडा मृगास्ते जन यत्कर्माचरितम मया च भवतः प्रीत्यै भवति वत्तत् Shambho svasya kutuhalasya karanam Machyashtitam nishchitam Tasman mamakarakshanam pasupati Kartavyamevatvaya. परमात्मा अलौकिक पुरुष है, इसके बावजूद भी शंकराचार्य जी जब उनकी स्तुति करते हैं तो मानो कि वो एक लौकिक पुरुष है। लोक व्यवहार में व्यक्ति आनंद के लिए बहुत कुछ करता है, हालांकि तमाम श्रुतियों ने परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा है। भगवान शिव स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद जिसका स्वरूप हो उसे आनंदित होने के लिए किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ गए? मिश्री स्वयं मधुर स्वरूप है, मीठा है, मधुर है, मिश्री को मीठा होने के लिए किसी अन्य का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जलेबी स्वयं मधुर स्वरूप नहीं है उसके। पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने इसका संकेत किया। जलेबी जब बनाया जाता है, मैदे को भिजाते हैं, एक दो दिन पहले उसको खमीर बनाते हैं, फिर उसको तेल में पकाते हैं, लेकिन मधुर नहीं होता है, मीठा नहीं होता है। तेल में पका हुआ जलेबी मीठा नहीं होता है, और जलेबी को मीठा करने के लिए मिश्री का यानी चीनी का आश्रय लेना पड़ता है। बेसन का जब पकौड़ा पकाते हो तो वह नमकीन नहीं होता है। वो पकौड़े को नमकीन होने के लिए नमक का आश्रय लेना पड़ता है, जलेबी को मधुर होने के लिए चीनी का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन नमक को नमकीन होने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ेगा? किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, खुद नमकीन है। चीनी को मधुर होने के लिए किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, चीनी खुद। तुम हम लौकिक पुरुषों को आनंदित होने के लिए अन्य का आश्रय लेना जरूरी है, क्योंकि हम लौकिक पुरुष में वह आनंद स्वरूपता अनुभव में नहीं आ रहा है। हालांकि वेदांत की प्रक्रिया से वो हमारा स्वरूप है, अपना ही स्वरूप होते हुए भी प्रातःकालीन प्रवचन पंचदशी के प्रवचन में आप लोगों ने सुना, प्रतिबंधक के चलते उसका अनुभव नहीं हो पाता। जब तक वो प्रतिबंधक नहीं हटेगा तब तक उसका अनुभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें अन्य का आश्रय लेना पड़ता है। तो हजार विकल्प हम लोगों ने खोज ली है, लौकिक पुरुष आनंदित होने के लिए अन्य का आश्रय लेते हैं और उसके लिए अन्य के रूप में हजार विकल्प खोजिए। भगवान शिव को कोई विकल्प खोजने की जरूरत नहीं। लेकिन मानो कि वो हमसे मिल रहे हैं, वो अलौकिक पुरुष होते हुए भी मानो कि वो हमारी तरह लौकिक पुरुष की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं। तो जिस तरह लौकिक पुरुष आनंदित होने के लिए क्रीड़ा करता है, खेल खेलता है, और जो खेल खेलता है वह साधन सापेक्ष है, बिना साधन का तो खेल नहीं पाएगा। तो उन अनेक प्रकार के साधनों का निर्माण करता है, उसका निर्माता भी वही है, प्रयोगकर्ता भी वही है, और उसका उपभोक्ता भी वही है। शंकराचार्य जी उनको कह रहे, भगवान शिव को कह रहे, हे शिव, संभो या संबोधन है, दो संबोधन यहां शिवजी के लिए शंकराचार्य जी ने प्रयोग किया है। पहला संबोधन है संभो और दूसरा संबोधन है पशुपति। पशुपति संबोधन में पशुपति, शंभु संबोधन में शंभो। क्रीडार्थम सृजसि प्रपंचम अखिलम, अखिलम प्रपंचम, पांच का खेल, पांच वस्तु को उपादान कारण के रूप में लेकर और उसी के पंचीकरण अपंचीकरण आदि के द्वारा समस्त स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों की रचना की। अपंचीकृत पंचों से सूक्ष्म जगत की और पंचीकृत पंचों से स्थूल जगत की रचना परमात्मा ने की है, इसीलिए इस जगत का, स्थूल और सूक्ष्म उभय जगत का नाम है प्रपंच। श्री जैसी अखिलम प्रपंचम श्री जैसी, आपने इसकी रचना की है, आपने इसकी सृष्टि की है, इस प्रपंच को आपने ही बनाया है। किस लिए बनाया है? बनाने का प्रयोजन क्रीडार्थम, मैं इस संसार में खेलूं क्रीडार्थम, इसलिए हमने भूमिका में कहा था, स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी साधन सापेक्ष क्रीड़ा करके आनंदित हों, ऐसी इच्छा परमात्मा की हुई, इसकी शिवजी की हुई, माया वृत्ति से ये इच्छा हुई। परमात्मा को ये जो इच्छा हुई है, मैं संसार में क्रीड़ा करूं, खेल खेलूं और खेलकर आनंदित हूं, इस इच्छा के चलते प्रपंचम अखिलम सृजसि, अपनी ही सृष्टि की है, खुद अपने ही इस प्रपंच को बनाया है। क्यों बनाया? खेलने के लिए बनाया। तो फिर क्रीड़ा मृगास्ते जना, संसार में आपके बायक और जो भी है, आपके अलावा जो है, सब क्या है? क्रीड़ा मृग है। क्रीड़ा मृग अर्थात खेल के खिलौने। खेलने के लिए जो खिलौने होते हैं ना, उनको क्रीड़ा मृग बोलते हैं। वास्तव में बच्चे सभी के अच्छे होते हैं। बच्चे सभी के अच्छे होते हैं। इंसान को भी गधा भले ही अच्छा न लगे, गधे का बच्चा बहुत आनंद देता है। उसकी चाल ढाल ही बड़ी निराली होती है, बड़ा आकर्षण होता है। मतलब भोला भाला पना दिखता है। कुत्ता भले ही पर अच्छा न लगे, कुत्ते के बच्चे बड़े आनंददायक होते हैं। किसी की भी, चाहे बकरे के देख लो, चाहे गाय के बछड़े देख लो, बिल्ली को देखकर व्यक्ति इतना आकर्षित नहीं होता है, बिल्ली के बच्चों को देखकर आकर्षित होते हैं। इसलिए जब मृग देखते हैं या मृग के शावक देखते हैं, मन में एक अलग प्रकार की स्फूर्णा अलग भाव प्रकट होता है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम। जनाः क्रीड़ा मृगाः ते क्रीड़ा मृगा। संसार में जितने भी जीव हैं वो सब आपके क्रीड़ा मृग हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, ध्यान देना। चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, चाहे सरीसृप हो चाहे पक्षी हो चाहे कीट पतंग हो, ये सब आपके खिलौने हैं। इन सब से आप क्रीड़ा करते हो, खेलते हो। खेलने के प्रयोजन से आपने इनका निर्माण किया है, बनाया है, इनकी रचना की है। तो शंकराचार्य जी आके क्या कहते हैं, यत कर्मा चरितम मया च। तब मैं जो चेष्टा करता हूं, हम सभी क्रीड़ा मृग हैं, इसलिए हम जो भी चेष्टा करेंगे, चाहे उठेंगे चाहे बैठेंगे चाहे सोएंगे, चाहे हंसेंगे चाहे रोएंगे, यत कर्मा चरितम मया यत कर्म आचरितम, मेरे द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं भवत प्रत्यय भवत्य बतत, सारी क्रियाएं आपकी प्रसन्नता के लिए ही हैं। क्योंकि शंभो स्वस्य कुतूहलस्य कारणम मत्चेष्टितम निश्चितम। मत्चेष्टितम, मेरे द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है वो चेष्टाएं वो क्रियाएं मैं अपनी मर्जी से तो करता नहीं। समझे कि नहीं? मैं अपनी मर्जी से तो कुछ करता नहीं, क्योंकि मैं तो खिलौना हूं। इस श्लोक को पढ़ते समय में आप शतरंज के खेल को स्मरण कर लो। शतरंज के खेल में राजा होता है, मंत्री होता है, सिपाही होते हैं, घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं कि नहीं? यही ना है, राजा, मंत्री, सिपाही, घोड़े और ऊंट है। हाथी भी होता है शतरंज में? अच्छा, हाथी भी होते हैं। शतरंज के खेल में रानी भी होती है, वजीर, मंत्री। रानी की तो बात मैंने नहीं सुनी है। चलो, होगे कुछ ना कुछ होंगे। हाँ, जरूरत पड़े डालो, नहीं पड़े तो हटाओ। तो कभी भी वो राजा, शतरंज का जो राजा है, राजा कोई साधारण व्यक्ति होता है, लेकिन भले ही वो शतरंज में राजा हो, उसकी चेष्टा तो खिलाड़ी पर निर्भर है कि नहीं। राजा जीतेगा कि हारेगा, खिलौने के राजा पर निर्भर है कि खेलने वाले पर निर्भर है? इस श्लोक को पढ़ते समय में वो दृश्य को सामने रखो। मान लो कि शतरंज का राजा हार गया, क्योंकि चलने वाले ने गलत चल दी। जिसने राजा ली रखा है, जिसके हाथ में राजा है, चाल चलने वाले ने गलत चल दी, परिणाम क्या हुआ? राजा मर गया। दुख किसको होगा? मरने वाले राजा को होगा कि खेलने वाले खिलाड़ी को होगा? खेलने वाले खिलाड़ी को होगा, क्योंकि राजा तो केवल खिलौने का है। मान लो कि खेलने वाले खिलाड़ी ने चाल में ऐसी चाल चली, इस तरह खेली, राजा जीत गया, राजा बच गया, प्रसन्नता खिलौने को होगा कि खिलाड़ी को होगा? खिलौने को न हारने का दुख है, खिलौने को न जीतने का सुख है। उस सुख और दुख से वो खिलौना असंस्पृष्ट है। खिलौने से हारना और जीतना, इसके संबंध खिलाड़ी पर है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा, कुतूहलस्य करणम मत्स्यष्टितम्। आपके प्रसन्नता का साधन रूप में जो खिलौना हो, मेरी जो चेष्टा है वह त्वया निश्चितम्, मया यत् चेष्टितम्। ध्यान देना, ये शब्द पर ध्यान देना, मया यत् चेष्टितम् तत् त्वया निश्चितम्। मैंने जो चेष्टा की, मैंने जो क्रिया की, जीतने की क्रिया की या हारने की क्रिया की, वह तो तुम्हारे निश्चय पर निर्भर करता है। किस कोष्ठ में जाकर बैठना है वो तो तुम बिठाओगे ना, मैं अपने आप तो जाऊंगा नहीं। और उस बिठाने की जगह पर अपने कैसे बिठाई, किस प्रक्रिया से बिठाई, मुझे प्रयोग करने पर ही आपको सुख होगा, मुझे प्रयोग करके ही आपको दुख होगा। खिलौने को सुख दुख नहीं होता। प्रयोगकर्ता को ही सुख दुख होगा, बाजी जीत गया, खिलौने को क्या खिलाओगे, रसगुल्ला खिलाओगे हैं? तुमने बाजी जीत ली, जीत लिया, खिलौने को क्या खिलाओगे? उन खिलौनों को तो बाजी जीतने पर भी खेलने के बाद उसी डब्बों में बंद होना है, है कि नहीं? उन खिलौने हार गए, बाजी हार गए, हारने के बाद भी उन खिलौनों को तो वही डब्बे में बंद करना है जिस डब्बे में जीतने पर बंद हुए थे, ठीक ही नहीं? बोलो, बाजी हारने वाले खिलौने कोई दूसरे डब्बे में बंद होंगे? बाजी जीतने वाले खिलौने कोई दूसरे डब्बे में बंद होंगे? लेकिन जीतने वाला बड़ा आनंद से मिठाई बांटेगा, खाएगा, और हारने वाला बैठकर रोएगा। कौन रो रहा है, कौन मिठाई खा रहा है? खिलाड़ी। तो इसी प्रकार से हे भगवान शिव शंभो पशुपते, क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम, 66वां श्लोक। संसार में जितने भी जो भी वस्तु का निर्माण किया आपने किया है, किस प्रयोजन से? खेलने के लिए, खिलौनों के रूप में सभी पदार्थों की आपने रचना की है, और इन्हीं खिलौनों के माध्यम से आप खूब खेलिए। शंभो स्वस्य कुतूहल, आनंद का खूब आनंद लीजिए, खेलिए। करणम माने साधन, मत्चेष्टितम निश्चितम, तस्मात् मामकरक्षणम पशुपते कर्तव्यमेव प्रयाम। मैं इतना ही अनुरोध करता हूं आपसे, मैं खिलौना हूं, मेरे से किस प्रकार का खेल खेलना है वह आप ही निश्चय करोगे, और मेरे से किस प्रकार की खेल खेलनी है वह आप ही मुझे खिलाओगे, चलाओगे। लेकिन आपके द्वारा परिचालित मैं हार गया, दुख तुम्हें होगा, आपके द्वारा परिचालित मैं जीत गया, आनंद तुम्हें ही होगा, और कहीं कदाचित मेरा अनुरोध इतना ही है कि खिलौने सुरक्षित रहेंगे तो आपको खेलने में भरपूर आनंद आएगा। तो आपसे मेरा अनुरोध यह है कि आप मेरे से खूब खेलिए, लेकिन अनुरोध इतना ही है, ख्याल आपको रखना है खेलते समय में टूट न जाए। खिलौना टूट गया तो जीतने और हारने का कोई सवाल ही नहीं, खेल ही, खेल की मजा ही खत्म हो गए। खिलौना टूट ना पावे, खिलौने की रक्षा खिलौना खुद करता है, खिलाड़ी करता है। तो आप खिलाड़ी हो कि खिलौने हो? आप खिलौने हो तो आपकी रक्षा खुद आप करोगे, तो खिलाड़ी कौन है? तो खिलौने की रक्षा किसके हाथ में है? तो खिलौने ने इतनी कह दिया, महाराज सावधानी से खेलना, मेरे रोने से आपको आनंद आता है, मुझे खूब रुलाइए, मुझे रोने में आपत्ति नहीं है, ध्यान देना हो, मुझे रुलाकर आपको आनंद आता है तो रुलाइए, खूब रुलाइए, आपको आनंद आनी चाहिए। मुझे हंसाकर आपको आनंद आता है तो खूब हंसाइए, लेकिन ख्याल ये रखना रुलाते रुलाते खिलौना टूट न जाए, फिर दोबारे मुझे रुलाना होगा तो फिर कहां से लाओगे खिलौना। समझे कि नहीं? ये भाव है भगवान के प्रति। भगवान के सामने आदिगुरु शंकराचार्य जी अपने आप को एक खिलौने के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और भगवान शिव को खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुरोध ये कर रहे हैं कि खिलाड़ी खेलते समय खिलौना न टूटे, इतने आप ख्याल रखो महाराज, जो खेलना है खेलो, जैसा खेलना हो खेलो। अब देख लो, कोई सिनेमा बना रहा हो और सिनेमा में हर प्रकार के पात्रों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? सिनेमा में हर प्रकार के पात्रों की आवश्यकता पड़ेगी। रक्षा करने वाले पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी, तो चोरी करने वाले चोरों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, बोलो हैं? बोलो। सिनेमा में चोरी करने वाले चोरों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं है? रक्षा करने वाला हीरो, उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो गलत काम करने वाले गुंडों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? बोलो। अच्छा काम करने वाला हीरो विलेन, उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके बराबर में उसमें बुरा काम करने वाला गुंडा लोफर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? सिनेमा में गुंडों की क्या आवश्यकता है भाई? हैं? क्या आवश्यकता है? क्यों गुंडों की भूमिका क्यों प्रस्तुत किया गया हुआ? बोलो। अब गुंडे नहीं होंगे तो हीरो अच्छा होगा? अब अंत में क्या करता है? कोई लड़की को जबरदस्ती कर रहा है कोई गुंडा, और लड़की रो रही है, और उसी समय में हीरो पहुंच गया, उसने दो चार मारी गुंडों को, और उसने उन गुंडों से उसकी रक्षा कर दी और हीरो की वाह वाही हुई, है ना? तो गुंडे की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? सिनेमा को हिट करने के लिए गुंडों की भी तो आवश्यकता है कि नहीं? बोलो। महाभारत सीरियल को हिट करने के लिए दुर्योधन की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? और महाभारत को हिट करने के लिए शकुनी की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? सबकी आवश्यकता है। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम। वहां शकुनी की भूमिका भी आई, दुर्योधन की भूमिका भी रही, युधिष्ठिर की भूमिका भी रही, दुशासनों की भूमिका भी रही, और दुशासन द्रौपदी की साड़ी न खींचते होते फिर तुम्हारे कृष्ण को कौन पूछता? बोलो। फिर तुम्हारा कृष्ण हीरो कैसे हो पाता? जब दुशासनों ने साड़ी खींचना आरंभ किया, द्रौपदी रोने लगी, अब भगवान साड़ी बनकर आ गए। ये भगवान की कृपा है। कब? दुशासनों की निष्ठुरता के चलते हुई कि नहीं? बोलो, भगवान की कृपा, दुशासन की निष्ठुरता प्रस्तुत न होते तो भगवान की कृपा का क्या पता चलता? तो हीरो हो गए कृष्ण, तो संसार में सभी की आवश्यकता है। आपको रोना भी पड़ेगा। द्रौपदी यदि कहे, मैं द्रौपदी की भूमिका तो पूरा करूंगी लेकिन रोने का काम नहीं करूंगी, तो फिर प्रोड्यूसर निर्माता उसको द्रौपदी की भूमिका में वर्ण करेगा कि नहीं? द्रौपदी को तो रोना ही पड़ेगा, बस पड़ेगा कि नहीं? बोलो। इसी तरह दुशासन की निंदा होती है, इसलिए मैं दुशासन का काम नहीं करूंगा, तो महाभारत सीरियल तैयार होगा कि नहीं? बोलो। तुम भी दुशासन बनने को तैयार नहीं, मैं भी तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं, तो महाभारत सीरियल कैसे बनेगा? बोलो। तो सबकी आवश्यकता है। कहां? खेल खेलने के लिए, नाटक करने के लिए सबकी आवश्यकता है। कभी मुझे हंसना भी होगा तो कभी मुझे रोना भी होगा, लेकिन भगवान मैं इतने अनुरोध करूंगा, मेरा प्रयोग करके भरपूर आनंद लीजिए। शर्त यह है, मेरी रक्षा भी कीजिए। क्रीडार्थं सृजति प्रपञ्चमखिलं क्रीडामृगास्ति जना यत्कर्माचरितं मया च भवत प्रीत्यै भवति वत्तत शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम् मत्स्यष्टितं निश्चितं तस्मान् मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। तुम्हारे द्वारा ही मेरी रक्षा होनी चाहिए, और कोई नहीं करेगा। प्रश्न करते हैं महाराज हमसे आकर, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, दूसरों को रुलाकर ये कौन सा खेल खेलता है परमात्मा भाई? ये भी कोई खेल होता है दूसरों को रुलाकर? प्रश्न करते हैं। दूसरों को मारकर खेलना भी कोई खेल होता है? लेकिन कंस को मारे बिना महाभारत होगा? हैं? बोलो, कंस को मारे बिना महाभारत होगा? द्रौपदी को रुलाए बिना महाभारत होगा? हैं? द्रौपदी के 5 सोए हुए बच्चों के सिर काटे बिना महाभारत होगा? और तुम प्रश्न करते हो कि ये कहां का नियम है भाई, दूसरे के बच्चों को मारा और महाभारत बना दी? द्रौपदी के सोए हुए 5 बच्चों को अश्वत्थामा द्वारा सिर काटा कि नहीं किया? काट दिया है? काटना पड़ा कि नहीं? बोलो। और अश्वत्थामा का सिर मुड़ाना पड़ा कि नहीं? मणि उतारना पड़ा कि नहीं? अच्छा लगा होगा जो अश्वत्थामा को, तुम लोगों ने किसी ने विरोध किया अश्वत्थामा का सिर की मणि को मत निकालो करके, हैं? विरोध किया? करना चाहिए, किसी ने आवाज निकाली? अच्छा किया, सोए हुए बच्चों को मारा था, द्रौपदी के सोए हुए बच्चों को मारा था, अर्जुन ने ठीक किया, मणि उतार दी, तुम खुश हुए कि भी नहीं बोलो, हैं? तुम खुश हुए कि नहीं, हैं? इसीलिए इतना ही समझना भाई, अपने को भगवान के द्वारा उत्पन्न किए हुए खिलौने से ज्यादा नहीं समझना। और अपनी दिनचर्या और चेष्टा में भगवान के संकल्प के अतिरिक्त अपना कोई संकल्प जोड़ना नहीं, अपना पूर्वाग्रह नहीं करना। समस्या कब होती है? हमको खिलौने के रूप में परमात्मा प्रयोग कर रहा है और अपने संकल्प के अनुसार वो हमको चला रहा है और हम उसकी इच्छा विपरीत हम अपना पूर्वाग्रह लेते हैं, नहीं तुम्हारे चलाने से नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा चलाओ। ये खिलौना कहीं कभी पूर्वाग्रह करता है? बोलो, खेल में कोई भी खिलौना पूर्वाग्रह करता है? मुझे हाथी के द्वारा नहीं मरवाओ, मुझे राजा के द्वारा मत मरवाओ, कहता है शतरंज का खिलौना। चाहे सेना से मरवाओ, चाहे हाथी से मरवाओ, जिसे मरवाना है मरवाओ, बचाना है बचवाओ, बस खत्म हो गई बात। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। जीवन के एक एक श्वास परमात्मा के संकल्प पर छोड़ दो, जीवन की एक एक दिनचर्या क्रियाकलापें परमात्मा के संकल्प पर छोड़ दो, तो भजन तो तुमने बहुत गाई है। जाके राख क्या जाही विधि राखिए ताही विधि रहिए, चाहे झोपड़ी में बास हो, हैं? क्या है वो, चाहे महलों में बास हो चाहे झोपड़ी में बास हो, लेकिन जब परमात्मा झोपड़ी में तुमको भेजता है तो परमात्मा से तुम नाराज हो जाते हो। भजन तो गा देते हो, भजन तो गा देते हो भगवान के सामने, हे भगवान चाहे तुम महल में रख चाहे झोपड़ी में रख, तुम्हें जहां इच्छा हो वहां रखो, मुझे झोपड़ी में रखकर तुमको आनंद आ रहा हो, मैं झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं, समझे कि नहीं? मुझे महल में रखकर तुम्हें आनंद आ रहा हो, मैं महल में रहने को तैयार हूं। लेकिन हम अपने आप को भगवान से भी बड़े मान लेते हैं ना, भगवान से बड़े किसलिए मानते हैं? हमको महल में रहने पर ही आनंद आएगा, इसलिए हम महल में ही रहेंगे, झोपड़े में तो किसी हालत में नहीं जाएंगे महाराज, हमको महल ही चाहिए झोपड़ी नहीं। परमात्मा कहते हैं तुम्हें झोपड़ी में रखकर हमको आनंद आता है, तो उस समय क्या कहोगे बोलो, हैं? उस समय क्या कहोगे? हमको तो रस और पूरी खाने से ही आनंद आता है महाराज, हमको तो रस पूरी ही चाहिए। अब परमात्मा कहता है महाराज रस पूरी नहीं, कभी कभी बाजरे की बासी रोटी भी नमक और मिर्ची के साथ खाओ बेटा, हमको आनंद आएगा, तुम खाने को राजी हो कि नहीं बोलो। वहां नहीं होते हो तब समस्या आई। वहां तुम क्या कहते हो? नहीं महाराज, मेरे द्वारा बाजरे की बासी रोटी और नमक मिर्ची से बासी रोटी खाने पर तुमको आनंद आता है, भले आवे, हम नहीं खा सकते। तुम्हारा यही कहना है कि नहीं बोलो? हैं? मानो कि उस भोजन से आनंद, तुम अपने को आनंदित होना चाहते हो, इसीलिए भक्ति अधूरी हो जाती है। इसलिए भक्ति अधूरी हो जाती है। उस क्रिया से तुम आनंदित होना चाहते हो खुद, जबकि वह क्रिया परमात्मा खुद आनंदित होने के लिए तुमसे करा रहा है, तो ये गलती हम करते हैं। तो परमात्मा के संकल्प में और हमारे संकल्पों में संघर्ष चल पड़ता है। परमात्मा के संकल्प में और हमारी दिनचर्या दैनदिनी में संघर्ष चल पड़ता है, तब जीवन विषाद हो जाता है। विषाद आनंद नहीं होता है। आगे का श्लोक, बहुविध परितोष बाष्प पुरस्फुट पुलकांचित चारु भोग भूमि चिरपद कांक्षी सद्यमानम परम सदा शिव भावनाम प्रपद्ये। बहुविध परितोष। देखो, योग में योग करने वाले योगियों को योग सिद्धि से पहले योग की सिद्धि के कुछ लक्षण दिखता है। ये लक्षण उस योगी साधक के जीवन में आवे तो मानो कि योग ठीक रास्ते पर चल रहा है। पूर्व भूमिका है, वो लक्षण से अनुमान करते हैं। और योग की जो भूमिका है वही भक्ति की भूमिका है। भक्ति शास्त्र में भी वही भूमिका है। तो आपकी भगवान के प्रति जो होने वाली भक्ति है, भक्ति भाव, वो भक्ति भाव कितनी पराकाष्ठा में है उसकी पूर्व भूमि का लक्षण दिखता है भक्तों में। ये स्वाभाविक भक्तों के स्वाभाविक लक्षण हो जाते हैं। इसको फिर नाटक के रूप में आप प्रस्तुत नहीं करना। ये लक्षण भक्तों के जीवन में स्वाभाविक अभिव्यक्त होते हैं। क्या है? तो बहुविध परितोष। भगवान की भक्ति अनेक प्रकार के संतुष्टि का कारण है। भक्त कभी भी असंतुष्ट होता ही नहीं। असंतुष्टि भक्त का लक्षण नहीं है। मैंने पहले एक भजन की पंक्ति गाई है, जाई विधि राखी है ताई विधि रही है। वहां असंतोष का कहां है? असंतुष्टि कहां है? वहां पर जाई विधि राखी है ताई विधि रही है, तो असंतोष कहां है वहां पर? हा? बात मरे, भक्त असंतुष्ट होगा कि नहीं? भगवान से असंतुष्ट होगा कि नहीं बाप मात्र पर? मां मरने पर भगवान से असंतुष्ट होगा कि नहीं? भक्त तो नहीं होगा। जाहि विधि रखिए ताही विधि रहिए। पति मरने पर भगवान का भक्त असंतुष्ट होगा कि नहीं, बोलो? होगा है? अन्यथा नहीं लेना हो। भक्त तो ये कह सके, महाराज पति न मरा है, तुम तो नहीं मरे हो, ये कहने का हिम्मत होना चाहिए कि नहीं भक्तों में, बोलो है? ये होनी चाहिए कि नहीं? पति मरा और रो नहीं रहा है, कोई पूछे पति मर गया क्यों नहीं रो रही हो, और खुद भगवान पूछे तुमसे तुम्हारा पति मर गया और तुम क्यों नहीं रो रही हो, तो तुम क्या जवाब देना है तुम्हें? पति मर गया, तुम तो नहीं मर रहे हो, बोलो। जाहि विधि राखे राम है, इतना साहस होनी चाहिए कि नहीं, बोलो ना भक्तों में। जाहि विधि राखे राम, बहुविध परितोष, ये अन्यथा संसार में को लोक माराध ही तुम समर्थ। कालिदास जी ने एक वाक्य लिख दिया है, ये संसार में किसी को भी पूर्ण रूप में प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई भी, कोई भी किसी को भी पूर्ण रूप में प्रसन्न नहीं कर सकता है। एक को खुश करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरा खुश तीसरा नाराज, एक वस्तु से वो प्रसन्न है दूसरे वस्तु से नाराज। को लोक माराध ही तुम समर्थ, तो एक ही चीज है संसार में, बहुविध परितोष, हर प्रकार से संतुष्ट होना भक्त का लक्षण है। हंसे तो ठीक, रोए तो ठीक, चले तो ठीक, बैठे तो ठीक। बहुविध परितोष बाष्प पूरा, दूसरा लक्षण बाष्प पूरा, भक्तों के भक्ति साधना के काल में, योगियों के योग साधना काल में और भक्तों के भक्ति साधना काल में बाष्प पूरा, उसके शरीर से पसीना निकलेंगे। हाँ, ये भक्तों का लक्षण है, और हम तो पसीना आने लग जाए तो घबरा जाएंगे, एसी कहां गया? स्फुट पुलकांकित शरीर में कंपायमान होने का, पुलकांकित शरीर में कंपायमान होने लगेगा। चारु भोग भूमि, आनंद की भूमिका है वो। चिरपद कांक्षी सेव्य माना, चिरपद कांक्षी सेव्य माना, जो नित्य आनंद के अनुभव करना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा सेव्य, उन्हीं को ही चिरपद प्राप्त होगा, उनके द्वारा परम सदाशिव भावनाम प्रबंध है। परम सदाशिव के भावना भक्ति के शरण में प्रपद्य में जाता हूं, तो परम शिव के जो भक्ति चरण में जिसकी अनन्य भक्ति है, वो भक्ति का प्रभाव यह है कि बहुविध परितोष, हर प्रकार की संतुष्टि प्राप्ति होगी। बाष्प पूरा, इसको अन्यत्र योग भूमि में इस तरह भी लिखा है, स्तंभ स्वेदो अथ रोमांच स्वर भंगो अथ बेपथु हो, भक्त स्तंभ हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, स्तंभ जड़ की तरह। भागवत आदि लक्षणों में तुम पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई सब स्तंभ हुए, स्तंभ हुए। भागवत में लिखा है जंगल के जो मृग शावक हैं, मृग हैं, घास खा रहे थे और मुख में जो घास लिया तो मुख ही में है। बच्चे मां के दूध पी रहे थे, चूसना बंद कर दिया, स्तंभ। जो जहां है वहीं स्तंभित हो गया। भगवान की बांसुरी का ध्वनि ऐसा मधुर था, इतना सम्मोहक था, पशु जंगल में घास चरते चरते जहां पहुंच गए थे वहीं खड़े हो गए। मुख में घास है, न वो परित्याग कर रहे हैं, न नीचे या उतार रहे हैं, स्तंभ। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। स्वेदः शरीर में भाव उद्रेक होने पर पसीना निकलने लगता है। अतः रोमांच लक्षण है, ये भक्ति पराकाष्ठा के लक्षण है। शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, रोमांच। स्वर भंगो, कुछ बोलना चाहें बोली नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं निकलती, बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते, स्वर भंग। बेपथु हो, शरीर कांपता है। वैवर्णम, उसका जो स्वरूप है उसमें बदलाव आ जाता है। अश्रु प्रलय, जोर जोर से आंख से आंसू निकलने लगते। यही भक्ति के सात्विक भाव है, ये सात्विक भाव है। लेकिन आजकल देखते हैं कोई कोई ये लक्षण पढ़ लेते हैं और समाज में बड़े नामी भक्त होने के लिए ऐसे ही रोने लग जाते हैं, नाटक की तरह रोने लग जाते हैं। कोई कोई, अरे ये तो बड़ा भगवान का भक्त है, ये सिद्ध करने के लिए कहां अपने लगते हैं। बहुत देखते हो, कहीं भगवान का भजन हो रहा हो, नाम जप हो रहा हो, कि संकीर्तन हो रहा हो, तो कीर्तन करते करते कांपने लगते हैं। ले जी, दो थप्पड़ मारो तो उनकी कांप गई। ये स्वाभाविक होनी चाहिए, ये भक्तों के लक्षण हैं। बहुविध परितोष बाष्प पूरा स्फुट पुलकांकित चारु भोग भूमि चिरपदकांक्षी सेव्यमानां परम सदाशिव भावनां प्रपद्ये। आर्यचंद, अमित मुदमृतम मुहुर्दुहंतिम विमल भवत्पद गोष्ठमा वसंतिम सदय पशुपतेषु पुण्यपाकाम् పరిపాలయ భక్తి ధేను మేకాం. భక్త బడే కభీ కభీ బదమాషీ భీ కర్తే కతే హైం అమిత ముద మృతం మోహర్ దుహంతి. మేనే ఏక్ గాయ పాల్ రఖీ హై. శంకరాచార్య జీ కహ రే హో శివ జీ సే సీధే కహ రే. శంకరాచార్య జీ భగవాన్ శివ సే సీధే కహ రే, సంభావ కర రహే. మేనే ఏక్ గాయ పాల్ రఖీ హై. బడీ అచ్చీ గాయ హై. అమిత ముద మృతం ముహుర్ దుహంతి. అమిత మనే అసీమ్, జిస్కి కోయి సీమా నహీ హై. ముద మనే ప్రసన్నతా కా, ఆనంద కా. అమృతం ముహుర్ దుహంతి, బార్ బార్ జబ్ చావో తబ్ జాన్ చావో తుమ్హా దూ సక్తే హో, జితనే బార్ చావో ఉత్నీ బార్ దూ సక్తే హో, వో దేనే మే సమర్థ ఐసీ గాయ మైనే పాల్ రఖీ హై. విమల భవత్ పద గోష్ఠమా వసంతి. లేకిన్ సమస్య ఏక హై మహారాజ్, उस गाय को बांधने के लिए मेरे पास अच्छा गोठ नहीं है. क्योंकि भैंस को तो जहां भी बांध दो चल जाता है, सुअर के लिए बहुत साफ स्थान चाहिए है? दुनिया में गंदा सा गंदा स्थान में रख दो तभी आनंद से रहता है कि नहीं सुअर है? लेकिन गाय रह सकती है ऐसी जगह? नहीं रह सकती. इसलिए उसको बहुत अच्छा जगह चाहिए, बढ़िया गोश्त चाहिए. मैंने संसार में बहुत जगह घूम घूम कर देखा, उस गाय के लिए गाय के अनुकूल गोष्ठ मुझे प्राप्त नहीं हुआ कहीं भी. एक जगह मुझे मिल गया है महाराज, वो क्या है? विमल पद, विमल भगवत पद गोष्ठम. निर्मल आपके जो चरण रूपी गोष्ठ है वहीं मैं इस गाय को बांधना चाहता हूं. महाराज तुमने गाय का नाम क्या रखी है? नाम होता नहीं गाय के. गाय के विशेषण तो बता दिया, अमित मुद अमृतम मुहूर् दुअंतिम. लात मारने तो जानती ही नहीं हो गाय. हालांकि लोक व्यवहार में कहा जाता है भैंस कभी लात नहीं मारती है कहते हैं, गाय लात मारती है कहते हैं. लेकिन ये हमने जो गाय पाली है वो लात मारने तो जानती ही नहीं है. क्यों नहीं जानती है महाराज वो गाय लात मारने क्यों नहीं जाती है? क्योंकि आपके लात के आश्रय में बैठी है तो किसको मारेगी वो है? भगवत पद विमल भगवत पद गोष्ठम आवसंतिम. वो गाय आपके निर्मल चरण रूपी गोठ के अलावा और जगह बैठना ही नहीं चाहती है वो है. भवत विमल भवत पद गोष्ठम, आपके जो चरण है वही उस गाय के लिए उत्तम गोष्ठ है, गोठ. वहां यदि आपने आश्रय दिया तो वो गाय बड़ी खुश होगी और मुझे नित्य निरंतर अमितमुद अमृतम मोर दुहंती। जब चाहो तब मैं उससे अमृत दू सकता हूँ। हर वस्तु के लिए आनंद का अमृत दूध के रूप में दे सकती है। सदाया महाराज कृपा करो। हमारे एक भक्त है, एक बार हमारे पास आकर उन्होंने कहा, ये सच घटना हो, और संयोग से उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था। घर में एक कुत्ता पाल रखा था, औसतन कुत्ते की आयु 14-15 वर्ष 12-14 वर्ष, ज्यादा ज्यादा 15-16 वर्ष की आयु है। उसे ज्यादा कुत्ते नहीं बांसते हैं, औसतन आयु वही है। उनके बहू बेटे दोनों बाहर चले गए, विदेश चले गए, अमेरिका चले गए। तो एक बाई रखा था उन्होंने घर में काम करने के लिए, बहुत पुरानी बाई। अक्सर उस कुत्ते की देखभाल वही बाई करती थी। समय में खाना देना, उसको बाहर ले जाना, घुमाना, है ना, बाई करती थी। बाई वृद्ध हो गई तो मर गई बाई, दूसरी भाई मिली नहीं। घर में कुत्ता है, 16 साल का हो गया, हो बहुत बूढ़ा है कुत्ता। अब अपने आप मर नहीं रहा है, घर में पाला हुआ है। अब उसको मारने का तो कोई हिम्मत नहीं करेगा, पाला हुआ कुत्ता कैसे मारेगा। अब उस बूढ़े कुत्ते को कोई दूसरा पालेगा भी नहीं। उसके लिए ऐसा बंधन हो गया है कि उस कुत्ते को छोड़कर एक दिन भी कहीं बाहर जा नहीं पाती है। उसी कुत्ते के लिए समय में खाना देने के लिए घर में रहना पड़ेगा। आकर मुझे सुनाती है, महाराज और कोई बंधन नहीं है घर में, कुत्ते का बंधन है। अब क्या कहूं भाई, कहां रखें उसको, और लेके जाए तो कहां लेके जाए, छोड़ के जाए तो किसके यहां छोड़ के जाए। वो जब तक नहीं मरेगा तब तक मुझे उसके अधीन में होकर घर छोड़ ही नहीं पाती हूं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मेरी जो गाय है ऐसे विलक्षण है वो है। अब इस गाय को लेकर बहू के यहां जाओ तो बहू पसंद नहीं करती है, करेगी? आजकल की बहू पसंद करेगी? सास ने ये गाय पाल रखी है, मान लो भगवान शिव की भक्ति रूपी कामधेनु सास ने पाल रखी है। अब भक्ति रूपी गाय को लेकर बहू के यहां जाओ तो बहू पसंद करेगी है? बेटे के यहां जाओ तो बेटा पसंद करेगा? तो तुम्हारे लिए ये मुसीबत हो गई कि नहीं बोलो है? तुम छोड़ भी नहीं सकते हो। अमितमुदम अमृतम मुहुर दुहंतिम, बार बार तुमको अमृत की प्राप्ति हो रही है, छोड़ भी नहीं सकते। और संसार में कोई भी तुम्हारे द्वारा धारण की हुई भक्ति को किसी को देने जाओ, कोई लेने को तैयार होता नहीं। आज के जमाने में कोई भक्ति लेने को तैयार है? बोलो। कभी कभी तो ये बिना मतलब का भक्ति हमने शुरू कर लिया, मुसीबत हो गया। कई बार शालिग्राम लाते हैं घर में वो शालिग्राम मुसीबत हो जाता है, मुसीबत हो जाता है। लेके जाएं तो अमेरिका कहां लेके जाएंगे, तुलसी का पत्ता मिलता नहीं, महात्मा ने शालिग्राम दिया था रोज तुलसी का पत्ता चढ़ाना, यहां थे तो चढ़ाते रहे, अब अमेरिका जाना है तो लेके जाए तो वहां तुलसी का पत्ता मिलेगा नहीं, यहां छोड़ के जाए तो बहुत चढ़ाएगी नहीं तुलसी का पत्ता, मुसीबत हो गई कि नहीं बोलो, क्या करें। भक्ति भी कभी कभी मुसीबत होती है, शंकराचार्य जी को हो गई, तुम्हें नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये भक्ति काम देनु, भक्ति देनु काम में काम, एक ही गाय है वह आपके विमल भगवत पद गोष्ठ में अवसंतिम वहीं बैठना राजी है, इसलिए हम आपके चरण रूपी गोठ में उस भक्ति को बांध देना चाहते हैं। सदय पशुपते सुपुण्य पाताम, मेरे अनेक जन्मों के सत्फल सत्कर्मों का फल परिपक्व हुआ तब जाकर आज मुझे बढ़िया गोठ प्राप्त हुआ, गोठ प्राप्त हुआ, कौन सा गोठ, भगवान के चरण रूपी गोठ की प्राप्ति हुई है बात। अब ये भगवत भक्ति रूपी गाय इसी गोठ में मैं बांधता हूं। मम परिपालय महाराज, इस गाय को पालने का काम आपका है, आपके प्रति मैं जो भक्ति कर रहा हूं उसकी रक्षा करने का काम आपके है, आपके चरण में मैं अर्पण कर रहा हूं। हाँ? मम परिपालय भक्ति देनु में ये काम, मैं और किसी को पत्नी को पालो मैं नहीं कहूंगा, बेटे को पालो ये नहीं कहूंगा, मां को पाल लो, बाप को पाल लो, मुझे पाल लो ये नहीं कहूंगा, एक भक्ति जो मेरे पास है उसको आप पालन करो, अपने गोठ में पालन करो, और ताकि अमृत दूध मैं पी सकूं। बोलो, भगवान को तो गोठ के गोठाला बनाने चाहते हैं शंकराचार्य जी, ग्वाला बना दिया भगवान के, बोले गाय भी तुम्हारी है, गोठ भी तुम्हारा, पालन पोषण तुम ही करो, हमको तो अमृत पान करना है बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।